फरीदा कहाँ है? हाँ?
सिलाई की क्लास में नाम लिखवाने गई है।
मनो चेहर की कोई तिला नहीं आई।
मैं तो चाहती हूँ 100 साल उसकी कोई खबर ना आए, उसके बाप की कब्र पर लानत हो। क्यों कोई खबर आई थी जो यूं मुझे दीदे फाड़ फाड़ के देख रहे हो?
खुदाया क्या कहूँ, सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस बदबख्त लड़की को शौहर से जुदा करके यहाँ लाई हो ताकि बड़ी की तरह उसका भेचार डालो।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम सारा कसूर मेरे सर डाल दो।
बड़ी ढीठ हो, किसने उसे तलाक पर मजबूर किया, मैंने या तुमने?
वाह, तुम्हारा ख्याल था वो लड़का मेरे जिगर गोशे पर जो चाहे सितम तोड़े और मैं चुप देखती रहूं और कुछ ना बोलूं?
जो सितम तुम्हारे जिगर गोशे पर टूटे हैं उनमें से सिर्फ एक तो बताओ, मैं भी तो जानूं।
सोच तो ये है कि मुझ में बहस का हौसला नहीं, वरना एक एक गिन के बताऊं तो ताज्जुब से तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाए। हाँ
चलो, इनमें से एक तो मुझे बताओ, देखूं ताज्जुब से किस तरह मुंह खुला रहता है।
तुम्हें अगर अक्ल होती तो पहले दिन ही जब वो बदबख्त रिश्ता मांगने आया था उसे सर में ऐसा दोहत्तड़ मारते के। बस अब मेरा मुंह और ना खुलवाओ, खत्म करो अब।
सिर्फ हाथ उठाने पर है?
नहीं, खर्च ना देने पर, बुरा भला कहने पर, एक झोपड़ी तक ना होने पर।
ये तमाम चीजें जो तुमने गिनवाई हैं, शादी के बाद हर मियां बीवी के दरमियान हुआ करती है। एक मिनट में लड़ते हैं और दूसरे मिनट में एक दूसरे को सर पर बिठाते हैं, शीरो शकर हो जाते हैं। आखिर हमें क्या पड़ी है कि उनमें आग लगा?
फिर वही, खुदा के लिए जो चीज खत्म हो गई है गुजर गई है उसके बाद ना करें।
यही तो मैं भी।
सलाम।
सलाम
सलाम।
ये बताओ दाखला हुआ?
हाँ, बड़ी सरदर्दी के बाद।
वाह, पैसे भी दो मिन्नत भी करो।
कहते थे आधा साल गुजर गया है, मुझे क्या पता, कहते थे ऐसे है वैसे है और पता नहीं क्या क्या, मिन्नत कर करके मर गई, फिर कहीं दाखला मिला।
कमाल है।
हाँ।
खैर से कब जाना शुरू करोगी?
आज शाम से ही जाना शुरू करूँगी।
खूब। ये तुम्हारी बगल में क्या है?
हाँ, ये कपड़ा है, रास्ते में आते हुए देखा तो खरीद लिया। मैंने सोचा जब भी फारिग हुई इसे काट कर अपने लिए कुछ सीऊंगी।
क्या भाव लिया?
1000 चख चख के बाद आखिर 55 रुपए 50 पैसे में ले ही लिया।
ये 50 पैसे किस बात के?
मुझे क्या मालूम, कहता था यही 50 पैसे हमारा मुनाफा है।
हाँ, उसके बाबा की अरवाह के हैं, खराब तो नहीं होगा?
मेरा ख्याल है नहीं।
मुबारक हो। देखो फरीदा।
हाँ?
तुम्हारा खाना चूल्हे पर है, दही और सलाद फ्रिज में है।
अच्छा
सुनो।
हाँ?
थोड़ी सी चाय दम कर लो, थकावट से मरी जा रही हूँ।
बहुत अच्छा।
क्लास में जाकर क्या बनेगी?
दर्जन।
ये तो वही बात हुई कि लुकमा यूं मुंह में रखा जाए, यानी दो बच्चे पीछे छोड़कर अब सिलाई सीखने जाएगी।
वाह, अगर सिलाई कढ़ाई सीख ली तो क्या बुरा है?
काश ये बात उस वक्त तुम्हारी अक्ल में आती जब ये कुंवारी थी।
अब भी देर नहीं हुई।
बेवी, अपनी जिदबाजी से बाज आओ, लड़की को इसके घर और जिंदगी की तरफ जाने दो। लोगों के दामादों में 100 ऐब और बुराइयां होती हैं, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहते। खामखा शरीफ और बेजरर जवान को बेटी की नजरों से गिरा दिया है और चीख चीख कर सबको बताती फिरती।
मुझे अपना काम करने दोगे या नहीं? अस्तग़फिरुल्लाह, इस मर्द के हाथों तो मैं आजिज आ गई हूँ।
खुदा तुम्हें समझे, पता नहीं वो बंदा खुदा दो मासूम बच्चों के साथ तन्हा किस मुसीबत में मुब्तला होगा।
लो मुकुल।
बाबा,
तुमने दोपहर से अब तक किसी चीज को मुंह नहीं लगाया। मुकुल उठ।
बाबा जान, अम्मी कहाँ गई हैं?
मुझे कुछ करने दोगे या नहीं? बस खोलो 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 खोलो। शाबाश,
अब वो नहीं आएंगी?
जाओ जाकर खेलो, अपनी बहन को खाना नहीं खिलाने देते। लो खोलो, थोड़ा सा और खोलो, खोलो। शाबाश, क्या हुआ तुम्हें?
आखिर निकल गया ना बाबा,
जब देखा कि मेरे हाथ मसरूफ है उसी वक्त तुम्हें पेशाब आता है। लहनत है जिंदगी पर, जल्दी करो, बाबा भी आ रहा है। बेटे, अब तुम बड़े हो गए, जब छी कर ले तो बाबा को आवाज देना, मैं आता हूँ।
बाबा।
फिर क्या हुआ? देख नहीं रहे, तुम्हारी बहन को ही खिला रहा हूँ। लो मेरे, लो बेटे, लो थोड़ा और।
मेरी बच्ची, तुम्हारा हाथ क्यों इतना गर्म है? अगर बीमार हो गई तो बाबा खाली जेब तुम्हारे लिए क्या करेगा? आ रहा हूं। किस जंजाल में फंसा है? क्या कहूं खुदा तुम्हें, क्या करेगी?
अच्छी सिलाई कर लेती हो तो फिर क्लास में जाना कैसा?
मसरूफियत के लिए, इसलिए कि पता न चले कि दिन कैसे गुजर रहे हैं।
जो वक्त तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बच्चों के लिए।
इसे कुछ नहीं हुआ, बेकार हवा न दे, सिर्फ थकावट की वजह से है।
डॉक्टरी भी कर ली?
मेरी बेटी ने उस झोंपड़े में इतनी तकलीफ उठाई है कि अभी तक उसका तावान दे रही है। खुदा जाने कि उस मुंडी टूटे ने क्या जुर्म ढाए हैं जो अपने बाप के घर भी इसकी जान नहीं छोड़ रहे।
उस घर में इतनी ज्यादा नौकरी की है, लगता है जैसे ही जहाँ भी उसे काम पर मजबूर किया जाता है।
तुम्हारी बहन सच कहती है, पहाड़ जैसे दिन में तुम्हें क्या मसरूफियत थी जो इस वक्त भी फ्रॉक सीने में लगी हो। उठो बेटी, उस कमरे में जाकर टेलीविजन देखो। उठो चले।
आप चले, मैं इन्हें समेट कर आती हूँ।
ये लोग किस फिक्र में है और बाजी क्या सोच रही है?
जो भी कहें लेकिन हकीकत ये है, खुदा जानता है तुम पर क्या गुजर रही है। बच्चों से दूरी, शौहर से दूरी, अपने घर और जिंदगी से दूरी, और ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं।
आप चले, मैं आती हूँ बाबा।
मेरी भी, तुम्हारा दिल परेशान है, तुम बच्चों के लिए उदास हो। मुतमिन रहो, तुम्हारे शौहर का हाल भी तुम्हारे जैसा है।
यहाँ लेटो बेटे, यहाँ लेटो। शाबाश, शाबाश। जब तक मैं वापस आऊँ बहन का ख्याल रखो।
पापा, पापा, मैं भी आऊंगा।
तुमसे अल्लाह बचाए, मेरी तुमसे बंधे हुए, क्या हुआ है तुम्हें? हाथ लाओ, इधर को मैं वो भी लाओ, देर ना करो। ओ, ओ चले। तुम यहीं ठहरो। अच्छा, माफ कीजिए, रात के वक्त जहमत दे रहा हूँ आपको।
क्या हुआ, कोई हादसा हुआ क्या?
मेरी बेटी हाथों से जा रही, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता था कि मुमकिन हो तो मुझे किसी अस्पताल या डॉक्टर तक पहुँचा दीजिए।
क्या हुआ उसे?
पता नहीं, उसकी हालत बहुत खराब है।
हाय अल्लाह, मैं मर जाऊँ। हम दावत पर जा रहे थे बेटी के घर।
बेगम, दावत छोड़ो, हमसाये की परेशानी पहले दूर होनी चाहिए। जब तक आप बच्ची को लाएंगे, गाड़ी तैयार होगी।
मेरी जान, मैं वाली, मेरे बच्चे, रो मत, अभी ठीक हो जाओगी। शाबाश मेरी अच्छी बेटी।
खुदाया, ए थके नहीं, आखिर अब कितना चलोगे? तुम्हारा क्या ख्याल है कि सिर्फ तुम बाप हो? हमने भी बच्चे पाले हैं, ऐसे मौके सब पर आया करते हैं, कोई कयामत तो नहीं आ गई?
कुछ दिन पहले ऐसा होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब डर इस बात का है कि अगर खुदा न खास्ता बच्ची को कुछ हो गया तो मेरी बीवी का खानदान मुझे कब्र में भी चैन नहीं लेने देगा।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो खुद को घुन की तरह खाए जा रहे हो। डॉक्टर ने कहा है कि कोई खास बात नहीं, आओ बैठो, थक गए होगे।
अल्लाह करे मेरी बच्ची ठीक हो जाए। आदमी के लिए बाप होना या माँ बहुत मुश्किल है। सो जाओ।
खुदा का शुक्र है उसकी तबीयत संभल गई है। डॉक्टर ने इजाजत दी है कि एक घंटे बाद उसे घर ले जाएं।
खुदा तेरा शुक्र है।
अब आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी बेटी ठीक ठाक है।
सोच में हो?
हाँ,
मैं जानता हूँ तुम किस हाल में हो। जिंदगी इसी को कहते हैं, कहीं दुख कहीं सुख, कभी खुशी कभी गम और कभी मुश्किल।
हमारे लिए तो हमेशा मुश्किल ही रही। सच तो ये है कि मेरी सारी जिंदगी अजाब हो गई है।
अगर सर्व से काम लोगे तो इंशाल्लाह मंजिल भी पा लोगे।
आखिर कब?
तुम घबराओ नहीं, अगर इस उम्र में पहली बार कोई मुश्किल आई पड़ी है तो यूँ पीछे ना हटो।
ना पीछे हटना कैसा, बीवी और दो बच्चों के होते हुए आदमी पीछे हट सकता है? इनका क्या बनेगा? इन मासूम बच्चों को परवान चढ़ना है, इनकी अच्छी तरबियत होनी चाहिए। आखिर इनकी जिम्मेदारी किसकी गर्दन पर है?
मैं ही कसूरवार हूँ।
क्या सोचा है तुमने?
आपके ख्याल में क्या सोचना चाहिए?
आखिर कोई ना कोई फिक्र तो करनी चाहिए इन दो बच्चों के साथ जिन्होंने तुम्हारे हाथ पांव बांध रखे। यूं बेफिक्र तो नहीं बैठ सकते?
बोला मैंने सोचा भी न था कि यूं हाथ पांव बन जाएं।
मालूम है, और मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको इनके इतने बड़े होने का पता ही नहीं चला होगा।
बखुदा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि कब बड़े हुए।
क्योंकि ये तमाम सख्तियाँ किसी और ने झेली, और वो है फरीदा खानम।
ये बताओ कि तुमने कभी ये नहीं सोचा कि अपनी बीवी के साथ सुलह कर लो और फिर से?
उसकी बात ना करें।
सब्र करो, मेरी बात खत्म होने दो, फिर बात काटना।
माफ कीजिए, फिलहाल तो मैं इस फिक्र में हूँ कि कहीं कोई काम मिल जाए मुझे।
काम बहुत है, मुझे तो आपके बच्चों की फिक्र है कि इनका क्या बनेगा।
हकीकत यह है कि बुरी तरह फंस गया हूँ मैं तो।
मैं तो कहती हूँ इनको कुछ अरसे के लिए अपनी माँ के पास क्यों नहीं छोड़ देते?
चाहता तो हूँ मगर हौसला नहीं पड़ता।
क्यों?
क्योंकि मेरी बहन और माँ को हमारी अलहदगी का पता नहीं।
यानी सरसे में आपकी माँ को पता ही नहीं चला कि आपके सर पर क्या बलान पड़ी?
बीवी की बात पर अमल करने का यही नतीजा होता है। मेरी बीवी का कहना था कि वो हमें जिंदगी नहीं गुजारने देंगे। मैंने भी माँ के घर जाना बिल्कुल छोड़ दिया कि इसके हाथ को बहाना ना आए, लेकिन मेरा ये अमल ठीक ना था।
मालूम है आपने ये अच्छा नहीं किया।
हाँ अब समझ आई है, जिंदगी की मुश्किलात हल करने के लिए उस वक्त जो कुछ भी मेरे जहन में आया या मेरी बीवी ने कहा वैसा ही मैं करता गया।
माफ करना, मेरी नजर में आप दोनों की गलती है। फरीदा खानम की गलती है कि उसने ऐसा किया, और आपकी गलती है कि आपने उसकी बात पर अमल किया और माँ के घर नहीं गए।
आप ठीक कहते हैं, इसीलिए तो अब मेरा हौसला नहीं पड़ता और मैं माँ का सामना नहीं कर पाऊंगा।
माँ को आपने नहीं पहचाना, इनमें इतना इसार होता है कि जिसकी इंतहा नहीं।
میرے خیال میں یہ مسئلہ زیادہ اہم نہیں، فی الحال تمہیں کوئی کام کرنا چاہیے جس سے اپنا خرچ چلا سکو۔
پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اپنی ماں کے پاس چھوڑو۔
دوسرا کام یہ ہے کہ سوچو کون سا کام کر سکتے ہو۔
ہر کام، اب تو مزدوری کے لیے بھی تیار ہوں، بس بیکار نہ بیٹھوں۔
یہ جو اب تم کسی کام کو عیب نہیں سمجھتی، یہ بڑی نعمت ہے، خدا پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
او فریدہ خانم، ذرا رکنا۔
سلام۔
سلام۔ ارے واہ، یہ بتاؤ آج کل کیا حال چال ہے بیٹی؟
آپ کی طرح سے اچھی ہوں۔
تمہارے بچوں کا کیا حال ہے یہ بتاؤ، انہیں مل کر آ رہی ہو؟
نہیں، ان کی مجھے کچھ خبر نہیں۔
اور کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا بیٹا اتنا اداس تھا، میں سمجھی تم انہیں مل کر آ رہی ہو۔
میں نے کہا نا کہ مجھے ان کی کچھ خبر نہیں۔
تو کیا اتنے عرصے میں ایک بار بھی ان کے پاس نہیں گئی تم؟
جانے کا وقت ہی نہیں ملا۔
ہاں، وقت نہیں ملا کیا مطلب؟ ان دنوں اپنی صورت بھی دیکھی ہے آئینے میں، تمہارا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا ہے۔ یہ افسوس کی بات نہیں کہ اتنے اچھے شوہر پھول جیسے بچوں کو تم نہ ملو اور یہ اپنی حالت یہ بنا لو۔
رقیہ خانم، رقیہ خانم،
دیکھو اگر تم سامنا نہ کر سکو بیٹی، تو میں حاضر ہوں تمہارے لیے کچھ کروں تاکہ تم اپنے گھر اور بچوں کی طرف لوٹ جاؤ۔
رقیہ خانم، اجازت ہو تو اپنے بارے میں خود بھی کوئی فیصلہ کر لوں۔ خدا حافظ، شکریہ۔
ہاں، تو نہ صحیح۔
سلام۔
سلام۔ سنو تو، کچھ ہوا ہے کیا؟ ایسی شکل بنا رکھی ہے جیسے دنیا جہان سے ناراض ہو۔
نہ کچھ ہوا ہے اور نہ کسی سے ناراض ہوں۔
نہیں، ضرور کچھ ہوا ہے جو اس کا منہ بنا رکھا ہے۔
بخدا کچھ نہیں ہوا۔
کہیں کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا یا پھر کوئی اور؟
پتہ نہیں، لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ دوسروں کی کھوج میں رہے۔ کوئی کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟
کس کی بات کر رہی ہو؟
یہ رقیہ خانم کی، جسے محلے کی تھانے دار ہو۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے دیکھے اور کچھ بولے بنا رہ جائے۔
ہائے، میں مر گئی۔ دیکھا، جس بات سے میں ڈرتی تھی وہی ہوئی۔
میں سمجھی نہیں، تم کس بات سے ڈرتی تھی؟
یہی کہ کسی رات تم گھر نہ اور یہ ہمسائیاں ہم پر باتیں بنا۔
پہلی بات تو یہ کہ میں کل رات خالہ اشرف کے گھر تھی، دوسری کہ ہمسائے کا مجھ سے کیا تعلق ہے، میں کہاں جاتی ہوں، کیا کرتی ہوں؟
تم نے سنا نہیں تھا وہ جو کہتے ہیں دروازے کو بند کیا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کی زبان
بند نہیں کی جا سکتی، لیکن فضول آدمی کا منہ اچھی طرح بند کیا جا سکتا ہے۔
او کیا ہو گیا تمہیں؟
سلام۔
لڑاکا مرغوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہی ہو، یہ اچانک تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بتاؤ، تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟
میں صرف یہی کہ تمہارا رات کو باہر رہنا اچھا نہیں، خانم کو تو ایسی لگے کہ آپ اسے باہر ہو گئے۔
کیا رات خالہ اشرف کے گھر نہیں تھی؟
خود بھی یہی کہہ رہی ہے۔
تو کیا خالہ اشرف کے جانا کوئی عیب یا برائی ہے جو کوئی باتیں بنائے؟
یہ بھی اچھا ہے کہ وہ خود اسی سے بات کرتی ہیں، اگر کوکب خانم سے کہہ دیں تب تک آدھی دنیا کو خبر ہو جاتی۔
غلط کرتے ہیں جو میری بیٹی پر باتیں بناتے ہیں، آدمی خود ٹھیک ہو تو کسی کا کیا ڈر؟ بعض اوقات تمہاری عقل پر بھی پتھر پڑ جاتے ہیں، بجائے اس کے اپنی بہن کی طرف تاری کرو لوگوں کی حمایت کرنا شروع کر دیتی ہو۔
لوگوں کو تو میں اپنی بہن کی جوتی برابر بھی نہیں سمجھتی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری بہن ہی میری بات کا غلط مطلب لیتی۔ ایسا لگتا ہے ان دنوں کچھ بدل گئی ہے۔
تمہارا خیال ہے؟
میرا خیال ہے؟ میں جو بڑی بہن ہوں، مجھ میں تو اتنی ضرورت نہیں کہ آدھا گھنٹہ بھی دیر سے گھر آؤں۔ کہاں یہ کہ ساری رات ہی نہ
تمہارا ستیہ ناس ہو۔ لڑکی اپنی خالہ کے گھر گئی تھی، تم کیوں فساد کھڑا کرنا چاہتی ہو؟ آج عاجز آ گئی ہوں میں تم سب سے۔ اے کہاں، تمہیں کہہ رہی ہوں لڑکی، کہیں ایسا تو نہیں کہ خالہ کی لڑکی سے کوئی بات ہوئی ہو؟ اتنی غمگین اور گمسم تو کبھی بھی نہ تھی، دیکھا نہیں کیسے اپنے کمرے میں گئی ہے اور دروازہ بند کر لیا ہے۔
مجھے کیا معلوم، شاید ایسے ہی ہو جیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ اس خود غرض اور حاسد لڑکی کے بارے میں تو جو بھی کہیں درست ہے۔
امی، میں دوپہر کو نہیں آؤں گا۔
اے، جمعے کے دن کہاں کی تیاری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔
ایک جمعے کے دن کی چھٹی ہوتی ہے، من مانی کرنے دو۔
کمال کرتی ہیں آپ بھی،
آخر وہ میرے، تمہارے یا بہن کے پاس بیٹھ کر کیا کرے گا؟ جاؤ۔
شکریہ امی، خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
मिनट दादी के घर जाओ। ये बताओ तुम्हें दादी अच्छी लगती है? वही जिन्होंने तुम्हें गाड़ी ले दी थी यार।
हाँ, वो सुर्ख रंग की गाड़ी,
वही जिसका तुमने दो दिन में हुलिया बिगाड़ दिया था, याद है? ठहरो मुझे देखने दो है या नहीं। सलाम।
सलाम। ऐवा, माँ कैसे याद आ गई? यकीनन रास्ता भूल गए हो ना। तुमने इतना अरसा खबर ही न ली कि हम मर गए या जिंदा है। आदमी बच्चे को पाले पोसे ये निकले कि वो अजनबी बन जाए। अब अंदर क्यों नहीं आते? अब ये भी कहना पड़ेगा केवान, केवान मेरी जान, दादी तुम्हारे सलाम के बारी। सलाम, सलाम मेरी जान। आओ मैं कुर्बान जाऊं। माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हो दादी, तुम्हारे सदके जाए। फरीदा कहाँ है?
फरीदा मैं मर गई हूँ।
हाँ, बच्चे को माँ के मुताले कैसे नहीं कहना चाहिए?
केवान, बेटे अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा
अच्छा
शाबाश।
आप मुझे बताओ भी कि फरीदा को क्या हो गया है? मेरी तो जान ही निकाल दी। बेटे तुम्हारे बाप को क्या हुआ है? कई महीने बाद आज मिलने आया है तो अपनी अक्ल भी घर छोड़ा है।
बुरा ख्याल दिल में ना लाओ।
फरीदा अम्मी नहीं है।
फरीदा नहीं है का क्या मतलब? खुदा ना करे कहीं। आखिर हुआ क्या है? तुम चाहते हो गम से मेरा दिल फट जाए।
हमें अलहदगी हो गई है।
हाय मैं मर जाऊं। पर क्यों?
पता नहीं।
और वो दूसरी कहाँ है? क्या नाम है उसका? तुम्हारी बेटी का कह रही हूँ।
उसे हमसायों के यहाँ छोड़ा है। बेहतर है इस तस्वीर को अब यहाँ से उतार लें।
वाह, मुझे क्या गैर से इल्म हुआ था? इंसानों वाले तौर तरीके हैं तुम्हारे। वो तुम्हारा शादी करना और फिर ये तुम्हारा तलाक देना।
पापा देखो अम्मी जान की तस्वीर है।
आओ आओ देखें, ये तो प्यारे हैं। देखो 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 प्यारे हैं ना। खिलाओ खिलाओ शब।
ये सारा किया धरा उसकी मनहूस बहन का है। बेटी से बाहर अच्छी तरह फूके मारनी थी ताकि यहाँ राख न उड़ाए।
फूके मारी थी?
खूबसूरत है बाबा।
शुरू से ही तुम्हें हंसता बसता नहीं देख सकती थी।
याद नहीं निकाह के दिन कितना फसाद मचाया था।
वो तो ऐसी कट कट के मरी जा रही थी कि खानम को दुल्हन के हाथों पर मेहंदी जो नहीं लगाने दी थी।
अगर वो लगा देती तो कौन सा आसमान गिर पड़ता माँ।
खुश नसीबों ने मेहंदी लगाई तो नौबत तलाक तक पहुंची। अगर वो मनुष्यन मेहंदी लगा देती तो पता नहीं क्या होता।
आप तो यूँ बात कर रही हैं जैसे वो खुदा की बंदी 70 साल की बूढ़ी।
बेटे औरत की उम्र जब 30 साल से ऊपर हो जाए तो वो बूढ़ी ही है।
अच्छा हुआ हमने उसे मेहंदी नहीं लगाने दी, वरना तो वही अलहदगी हो जाती।
एक भी काम की बात नहीं, सब खुराफात है, मुफ्त की बात है, कुछ ख्याल करें।
भैया को देखो कहता है खराफात है।
यही तो तुम जवानों की जिहालत है जो तुम इन चीजों पर यकीन नहीं रखते, इसीलिए तो ठोकरें खाते हो। देख लो।
क्या देखो? ठीक।
क्या ठीक है? तुम्हारी तलाक का कह रही हूँ। कहाँ से ये चोट खाई है? अपनी बेतकादियों से और फिर कहते हो ये खराफात है।
इसकी असल वजह कुछ और है जो सिर्फ मैं जानता हूँ।
असल वजह तो सारा जमाना जानता है। भैया ने क्या तीर मार लिया है जो असल वजह समझ में आ गई?
बिला वजह मुंह ना बनाओ। सच्ची बात कड़वी होती है। अब तुम जो भी कहो, असल कसूरवार तो तुम खुद हो बेटा। अगर शादी के पहले दिन से ही उसे रोक तले रखते तो ना तो वो तुमसे ऐसा सलूक करती, ना उसका खानदान तुम्हारी जिंदगी में दखल देने की जुर्रत करता, और ना तुम इस हाल को पहुंचते बेटा। इस बीमारी ने तो न चलना था न चला। लो इसे, मजा ही नहीं दे रहा।
अम्मा कहें तो इसे दोबारा ताजा कर दूं?
ना, जी नहीं जा रहा। इसका न तंबाकू अच्छा है न इसकी आग। मुझ में भी अब हुक्का पीने का दम ही नहीं रहा। कहाँ?
पानी पीता हूँ।
100 बार कहा है उसे ऐसी नजर से देखो कि वो खौफ से कांपे। देखते क्या हो, जब पहली बार रूठकर अपने बाप के घर जाना चाहती थी तो ऐसा तमाचा मारती कि दीवार से जा लगता। तो फिर कभी लापरवाही ना करती वो।
अभी मसला हो, आप सबके लिए यही नुस्खा तजवीज करती हैं।
यही एक नुस्खा है जो हर दर्द की दवा है। किधर, मैं तुम्हारे लिए चाय डाल रही हूँ।
कहने सिगरेट उठा रहा
हूँ। अल्लाह बख्शे तुम्हारे बाबा को, उसकी कब्र पर नूर बरसे। उसकी मिसाल तो फिर ख्वाब में मिलेगी। पहले दिन जो मुझसे हंडिया चल गई, उन्होंने वही हंडिया ऐसे जोर से मेरे सर पर मारी कि मुझे जमीन आसमान घूमते नजर आए। मेरे लिए वो ही काफी थी। उसके बाद जब तक जिंदा रहे मैं खुद तो जल जाती, लेकिन हंडिया ना जलने देती।
अब मुझे दो लफ्ज बोलने दोगी माँ, या फिर जब भी मैं बोलने लगूंगा तो हंडिया और बाबा से मार खाने की बातें मुझे सुनाने लगूंगी।
वाह, तुम तो बोलने की बजाय सिगरेट ही पिए जा रहे हो। देखो तो कमरे में कितना धुआं भर गया।
ये लो, इस शर्त पर कि तुम भी अब नहीं बोलोगी। माँ, इन बातों की रुई अपने कानों से निकाल दो। ये मेरी दूसरी गलती होगी कि बीवी पर हाथ उठाऊं, चाहे बीवी साथ रहे या ना रहे।
ये कहो कि इन तिलों में तेल ही नहीं।
मेरे पास तो तिल ही नहीं है।
ये उससे भी बुरा।
बुरा या अच्छा, अगर आपने सुना कि एक दो बार मैंने फरीदा पर हाथ उठाया है तो वो भी सिर्फ आप लोगों के भड़काने पर।
लो और सुनो, अब खुद से बातें कर रही हो।
जो बातें आप करती थी उनका मुझ पर असर होता था, मगर आपने देखा कि मारने से भी मसला हल नहीं हुआ बल्कि बदतर हो गया। हम दोनों के दरमियान जो एक दूसरे की इज्जत थी वो भी जाती रही।
तुमने जरूर उसे ऐसे मारा होगा कि उसे कुछ हुआ ही नहीं होगा। उसे तो ऐसे थप्पड़ मारते कि 2 बार चक्कर खाए और सर पटाख से जमीन पर जा लगे।
मेरा मसला उसे जोर से मारने या उसका सर जमीन से लगाने का नहीं है। मेरा मसला ये है कि मेरी बीवी माल और दुनिया के लिए मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चली गई है।
कौन सा माल भाईजान?
अगर कोई चीज है तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्यों हरफों का हेरफेर कर रहे हो?
दरअसल मैं पिछले 4 माह से बेकार
हूँ। उन्होंने निकाल दिया?
नहीं, कंपनी खत्म हो गई थी।
इतने आराम से?
मैं अकेला तो नहीं था, इतने आदमी बेकार हुए उनमें से एक मैं हूँ।
ये भी अफसोस की बात है। मुश्किल तो उस आदमी के लिए है जो मजदूर हो या फिर अनपढ़ हो। माशाल्लाह तुम सेहतमंद हो, पढ़े लिखे और डिप्लोमा रखते हो। ये इतनी कंपनियां जो खुली हुई हैं, उन्हें कारकुनों की जरूरत है। तुम काम ढूंढने क्यों नहीं गए बेटा?
गया हूँ, सब जगह चक्कर लगाया है। अखबार का जरूरत है का सफा मुझे जबानी याद है। तमाम दफ्तर और कंपनियों में गया हूँ, लेकिन सबको या ड्राइवरों की जरूरत थी और चौकीदारों की।
क्या कह रहे हो?
तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे डायरेक्टर बना देते? जो पैसे घड़ी और मंगनी की अंगूठी बेचने से मिले थे वो भी खत्म हो गए।
तो तुम मुझ बदबख्त के पास क्यों नहीं आए? शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती।
आदमी जब बेकार, कलाश और मजबूर हो जाए तो दिमाग काम के काबिल नहीं रहता। खुदा किसी को बेकार और मोहताज न करे। जरा सोचें, میں صبح سے آدھی رات تک سارے شہر میں کتے کی طرح مارا مارا پھرتا تھا, اور جب تھک ہار کر اپنے بے جان جسم کے ساتھ گھر لوٹتا تو تفتیش شروع ہو جاتی.
سلام.
سلام.
کیا بنا؟
گھر میں پاؤں تو رکھنے دو.
آج بھی ملازمت نہیں ملی.
مجھے کپڑے بدلنے دو, ہاتھ منہ دھونے دو, چائے زہر مار کرنے دو, پھر سولی پر لٹکانا.
بن کہے تمہارا اترا ہوا چہرہ بتا رہا ہے. اس مہینے کے آخر تک 3 ماہ ہو جائیں گے. بخدا میں کوئی بہانہ نہیں کر سکتی. مکان کا کرایہ تو گیا جہنم میں, بجلی اور پانی کے بل کے لیے آخر کیا بھاڑ جھونکوں, اور بقول تمہاری ماں کے بچوں کے پیٹ میں آخر کیا ڈالوں.
بھاڑ میں گیا سب کچھ.
ہاں
میرے پاس نہیں ہے, صبر کریں. نہیں ہے.
یہ سارا غصہ مجھ پر کرنے کے بجائے ان سے جا کر بات کرو.
میں مزدوری کرنے سے ڈرا, کام نہیں ہے, سمجھی؟
کام ہے, سب لوگ کیا کرتے ہیں. یوں کہو کہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے.
مجھے حساب کتاب کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا, کچھ بھی نہیں.
تو چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ امی کے گھر کے اوپر والی منزل میں جا کر رہتے ہیں. اور کچھ نہیں تو کم از کم کرایہ سے تمہاری جان چھوڑ جائے گی.
یا تو مہینے میں ایک بار مالی کے مکان سولی چڑھائے گا, وہاں تو ہٹلا میں سولی پر لٹکا رہوں گا.
تو پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے بچے بھوک سے مر جائیں اور سرکار کسی میز کرسی والے کام کی تلاش میں پھرتے رہے.
اگر تمہیں بچوں کی اتنی فکر ہے تو جب میں نے کہا تھا کہ مجھے جنوب میں ایک اچھی تنخواہ والا کام ملا ہے تو تم وہاں جانے پر تیار کیوں نہیں ہوئی؟
اس لیے کہ تمہارا اصل مقصد مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنا تھا. میں جانتی ہوں کہ تم نے میرے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے, لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں اپنے ماں باپ سے دور کہیں نہیں جاؤں گی, کہیں بھی نہیں. تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ, اگر نہیں تو مجھے طلاق دے دو بس.
تمہارا خیال ہے تمہیں سرخاب کے پر لگے ہیں؟
جو بھی ہوں تمہاری طرح بیکار اور لاچار نہیں کہ کسی کا احساس ہی نہ ہو.
کس کا پہلو بن رہی ہے؟ اپنے باپ کا نہیں اگر تمہیں طلاق نہ دی.
لعنت اس پر جو طلاق نہ دے.
اگر طلاق نہ دوں تو منہ پر تھوک دینا.
میں اب ایک منٹ بھی اس جیل میں نہیں رہوں گی, چاہے مجھے طلاق دو یا نہ دو. اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے چلے جاؤں گی. اٹھاؤ
بچے, تم مر جاؤ تو بھی نہ دوں.
بہت خوب, بچے بھی تمہارے ہوئے, انہیں بھی اپنے پاس رکھو, انہیں بھی اپنی طرح بیس اور لاچار بناؤ.
دفع ہو جاؤ, اگر تم نے پھر اس گھر میں پاؤں رکھا تو ہڈیاں توڑ دوں گا, سر کاٹ دوں گا تمہارا.
ہاتھ میں کاٹنا.
میں بھی آتا ہوں.
کچھ نہیں بیٹے, ہماری ماں مر چکی.
اگر تم نے اپنی زندگی میں کوئی صحیح کام کیا ہے تو وہ یہی کہ اسے طلاق دے دی. مجھے اس طرح نہ دیکھو. خدمت گزار عورت کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب مرد کسی وجہ سے کلاش ہو جاتا ہے, ورنہ خوشحالی کے دور میں تو آیا بھی ماں سے زیادہ پیار کرتی ہے. اگر مجھ سے پوچھو تو تمہاری بیوی کا مزاج اپنی ماں پر گیا ہے.
رشتہ طے ہوتے وقت بھی ڈاکٹروں اور انجینئروں کے رشتے کی ایسی شیخی مار رہی تھی جیسے وہ سب اس کی بیٹی کے لیے دروازے کے باہر لائن میں کھڑے کہ دروازہ کھلتے ایک دوسرے پر آن گریں گے.
ہاں ہاں واقعی. تم نے بھی تو خوب جواب دیا تھا, پیلی پڑ گئی تھی وہ.
جواب نہ دیتے تو مر جاتی.
یہی فضول باتیں ہیں جنہوں نے تمہاری بیوی کی آنکھ خراب کی اور وہ گھر سے بے گھر ہو گئی ہے.
بہرحال جس کی بھی غلطی تھی, فی الحال تو میرے لیے زندگی کو جہنم بنا دیا ہے جس میں صرف میں اور میرے بچے جل رہے.
بیٹے خامخواہ غصہ نہ کرو, اٹھو اپنی بیٹی کو یہاں لے آؤ, اپنی آنکھوں کی طرح اس کی حفاظت کروں گی. وعدہ کرتی ہوں کہ وہ یہاں اچھی طرح رہے گی اور تم بھی سکون سے اپنے گزارے کے لیے کوئی کام ڈھونڈ سکتے ہو.
بہت بھوک لگی ہے, کتنی بھی دور کے لیے رو رہی ہے.
کھانا پکانے دو گے یا نہیں؟ اگر کسی بھی ایک گھنٹے کے لیے نکل کے چلے جاؤں تو کیا بنے گا؟ اور اسے جلا دیا. سو گئی ہو کیا؟ گھی میں کیوں نہیں تلتی؟ کیوں اتنا مکھن ضائع کر رہی ہو؟
مجھے تو ایسے ہی پکانا آتا ہے, تمہیں اگر بہتر پکانا ہے تو لو آ کر پکا لو.
یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے آج؟
مجھے تو کچھ نہیں ہوا, تم یوں ہی تکرار کر رہی ہو.
میں نہ تکرار کر رہی ہوں نہ ہی مجھے کھانا پکانا آتا ہے. میں صبح سویرے دفتر جا کے اس لیے جان ماری کرتی ہوں کہ اس گھر کو چلا سکوں, مجھے گھر کی نوکری نہ کرنی پڑے.
शुक्रिया।
फरीदा बेटी कहाँ हो? खाना ठंडा हो जाएगा। खानम रूठ गई है शायद।
रूठी किस लिए? इसे जरूर बच्चों की याद आ गई है।
तुम फिर भूल गए? 100 बार कहा है कि बड़ों की बातों में दख नहीं दिया। इन बातों की बजाय खामोशी से अपना खाना।
नहीं, फराज ठीक कह रहा है, लेकिन उसका दिल बच्चों के लिए उदास है।
आपको याद है उसने यहाँ पांव रखते ही कहा था कि मैं अब उनकी सूरत भी दोबारा नहीं देखूंगी।
दुरुस्त है, जब इंसान जिद में आ भी जाए तो 100 तरह की बातें करता है, लेकिन कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बच्चों से दूर रहकर खुश रहे?
आप अपनी इन्हीं बेजा और फजूल हमदर्दियों से शिक्षा दे रही कि बस जेल खाने की तरफ दोबारा लौट जाए अपने उस निखट्टू शौहर के पास।
अव्वल तो ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, और अगर फर्ज कर लिया जाए कि ऐसा है तो क्या जब मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ पैदा हो तो उन्हें एक दूसरे से तलाक ले लेनी चाहिए?
तुम अपना खाना खाओ, खुदा न करे तुम्हें बोलने का मौका मिले।
ये क्यों कर मुमकिन है कि हम खाना खाएं और वो भूखी रहे?
थकी हुई है, जब उसे भूख लगी आकर खा लेगी।
बेहतर ये है फरहाद उसे बुला ले।
खामखा बात को तूल ना दो, तुम अपना खाना खाओ।
बात इतनी मामूली भी नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। अगर हम उसे तूल ना भी दें तो खुद तूल पकड़ लेगी।
माशाल्लाह,
आखिर 2 बच्चों की जिंदगी का मसला है, ना खुद कुछ करती हो और ना किसी और को कुछ करने देती हो। देख लेना, पलक झपकते ही लड़का दूसरी शादी कर लेगा। उस वक्त के बारे में भी कुछ सोचा है कि सुतेली माँ के हाथों 2 बच्चों को क्या होगा और वो क्या बनेंगे? हाँ फरीदा मेरी बेटी, खाना खाने क्यों नहीं आती? बेटी
किधर?
बाजी को बुलाने जा रहा हूँ।
जरूरी नहीं, अपने बाप की तरह क्यों हर बात में टांग अड़ाते हो? मरो बैठो।
जबरदस्ती है, नहीं खाता खाना मैं।
तुम एक दूसरे के पीछे क्यों पड़ गए हो? किधर? खाना खाए बगैर क्यों चलती है?
क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई हो? कम से कम इस एक को तो उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ करने दो।
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुबह से रात तक जान मारी करती हूँ, कमा कर इस घर में लाती हूँ, फिर भी देनदार हूँ। पता नहीं क्यों इस घर में आप सब लोग मेरी मुखालफत करते हैं।
मैंने तो कुछ नहीं कहा। लड़का माशाल्लाह जवान हो गया है, उसे ये कहना अच्छा नहीं कि ये काम करो वो काम ना करो।
तुम हमें सबक ना पढ़ाओ, हम अच्छी तरह जानती हैं कि किससे क्या सलूक किया जाए।
शैतान पर खुदा की लानत हो, ये भी कोई खाना है? ये भी कोई जिंदगी है?
इतनी भी बेइंसाफ ना बनो। तुम्हारा शौहर पहले दिन से तो ऐसा ना था या था?
अगर सच पूछूं तो नहीं, लेकिन ये भी आपको बता दूं कि अगर शुरू से मुझे पता होता कि वो ऐसा है तो मैं कभी उससे शादी ना करती।
ये है ना बात। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा शौहर, जो तुम्हारे बकौल खुश अखलाक और मेहरबान था, अचानक बद अखलाक और बदजुबान कैसे हो गया?
मेरा ख्याल है जब से बेरोजगार हुआ।
यानी सिर्फ बेरोजगारी के बाइस?
क्या कहूँ, मेरा ख्याल है कि नहीं।
हो तो फिर क्या?
मसलन जब कभी अपनी माँ के घर जाता तो वापसी पर बिल्कुल एक और आदमी दिखाई देता। लगता था उसकी माँ और बहन उसके कान भरती थी, खामखा बगैर किसी वजह के बहाना बनाता, ऐसे कि बाज़ औक़ात तो मेरा जी चाहता कि।
और तुम खुद जब यहाँ आती थी तो तुम्हारे कान नहीं भरे जाते थे? तुम भी एक औरत से दिखाई न देती थी? किसी को तीर मारने से पहले बेहतर है कि आदमी अपने आप को एक स्विच बोकर देख ले।
खूब गलती उसकी थी, अगर मुझे तंग ना करता तो मैं वहां से यहाँ ना आती और अपने दुख उन्हें ना सुनाती।
क्या एक बार भी ऐसा हुआ कि तुमने अपने शौहर के गिले किए हो या उसके बारे में बुरा कहा हो और उन्होंने तुम्हें सच्चा कहने की बजाय झिड़क कर तुम्हारे घर रवाना किया हो?
हमेशा जो कहती थी मेरी साइड लेते थे, ये चाहते थे कि मैं अपने घर और जिंदगी की तरफ लौट करना चाहूँ।
माफ करना, अगर तुम्हें अकल होती और तुम देखती कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारी जिंदगी में बेजा दखल दे रही हैं और चाहती हैं कि तुम्हारे शौहर को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालें, तो तुम अपनी जड़ें खोदने के लिए उनके हाथ में औसार न देती कि वो तुम्हारी जिंदगी के पीछे पड़ जाएं और उसे यूं बर्बाद करें। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इस तरह अपने शौहर की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारती कि वो भी शर्म से पानी पानी होता और दूसरों को भी दखल देने की जरूरत ना होती।
अम्मी, अम्मी, कहाँ हो अम्मी?
क्या हुआ है, क्यों घर को सर पे उठा रखा है?
अम्मी रोटियां कहाँ रखूं?
यहाँ। ये भी कोई पूछने की बात है? कौदन तुम्हें पता नहीं इस घर में दस्तरखान कहाँ रखा है?
अगर दस्तरखान में रख दूं तो कहोगी गरम गरम रख दी, गीली हो गई। अगर उन्हें खुला रख दूं तो हवा लगेगी, कहोगी खुश्क हो गई। इस घर में आदमी का अपना तो कोई इख्तियार है ही नहीं।
फहीमा घर में नहीं है तो तुम जबान दराज हो गए हो। इन्हें खुश्क होने से पहले दस्तरखान में रख दो, जाओ। कोई काम ही नहीं करने देता।
अम्मी के बकौल आदमी नौकरी करे मगर ऐसे आदमी के साथ गुजारा ना करे।
तुम्हारा क्या ख्याल है?
मैं
अब तक जो कुछ तुमने कहा है या तुम्हारी बहन के बकौल था या तुम्हारी माँ के, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने शौहर के बारे में तुम्हारा अपना क्या ख्याल है। माशाल्लाह दो बच्चों की माँ हो, ये बहुत बुरी बात है कि आदमी अपना अख्तियार किसी और के हाथ में दे दे और खुद कुछ भी ना रहे। अगर तुम अपने शौहर से नाला हो तो खुद उसे क्यों नहीं कहती? अगर तुम्हारा शौहर भी तुम्हें कोई ऐब या बुराई देखता है उसे भी तुमसे बात करनी चाहिए, ना कि अपनी माँ और बहन से। अगर तुम मेरी बातें गौर से सुनो और अमल करो तो कभी भी तुम लोगों में इख्तलाफ पैदा ना होगा और किसी को भी जरूरत नहीं होगी कि तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी करे।
अम्मी क्या कर रही हो?
देख नहीं रहे हो, कमरे में झाड़ू दे रही हूँ।
अम्मी अंदर कोई है?
तुम फजूल लड़के हो, जाओ अपना हो बंद करो।
मैं आका जी को देखने आया हूँ।
अपनी पेंशन के टके लेने गए हैं। तुमने जरूर यहाँ रुक के हाथ फाकनी है? झाड़ू से एक तरफ हटो, जाओ।
अम्मी है, झाड़ू दे रही है।
सुन रही है?
ये चुप क्यों हो गई?
मैं कह रही थी अपने अच्छे बर्ताव और अपनी मैं छोड़कर तुम उसे ठीक कर सकती हो। अपने घर और जिंदगी की तरफ लौट आओ। तुम मेरी इस बात का यकीन करो, अगर तुम्हारा शौहर फिर भी न संभला तो जो तुम्हारे जी में आए मुझे।
अम्मी, अम्मी, हाय मैं मर गई।
अम्मी ये क्या है? अगर मैं मर जाती तो दरवाजे को अंदर से कुंडी क्यों नहीं लगाई थी?
अम्मी,
अम्मी क्या है ये जो इसरार कर रहे थे कि अपने घर की तरफ लौट जाओ? अगर मेरे हाथ भी काट दे तो फरीदा को कभी उस घर में वापस ना जाने दूं। क्या ख्याल है आपका? इन
छह सालों के दौरान मेरी बच्ची का खून निचोड़ लिया गया जैसे सिर्फ हवा खा के जिंदा रही हो। जब शादी हुई तो मेरी बेटी माशाल्लाह अनार की तरह सुर्ख थी और जब वापस आई है तो उस वक्त देखती जैसे हुक्के की नड़ी।
बहरहाल जिस शख्स की आप इतनी बुराई कर रही हैं, दो बच्चों का बाप है और ये बच्चे आपके नवासे हैं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकती। कर सकती हैं?
उनके बाप ने कौन सा ताज पहनाए जो ये हमें पहनाएंगे?
अम्मी,
अरे अम्मी क्या, मैं उस नमक हराम मर्द को अपने हाथों की लकीरों से ज्यादा जानती हूँ। अगर एक बार किसी के बहकावे में आके तुमने उस घर में पांव रखा तो मैं तुम्हें बता रही हूँ इस बार वो तुम्हारा जनाजा हमें भेजेगा। आगे तुम खुद समझदार हो।
कुछ तो इंसाफ करें, मनुचेर कोई शिमर तो नहीं है।
कहती है नहीं, जब तक उसकी वो बूढ़ी माँ और मनहूस ठिगनी बहन उसकी उस्ताद है, वो शख्स शिमर से भी बदतर है।
हर कोई अपनी जिंदगी गुजारता है, किसी को कोई हक नहीं कि वो किसी तरह भी दूसरों की जिंदगी में दखल दे, चाहे उसकी माँ हो या बहन।
ये हुई ना हक बात, मैं भी यही कहती हूँ। जब तक वो दोनों डायने हैं, उनकी जिंदगी की गाड़ी कभी नहीं चल सकती, नहीं चल सकती।
काश के सिर्फ वही दो होती, काम और जगहों से भी खराब है। अच्छा आप इजाजत दीजिए, मैं चलती।
अरे वाह, अब ऐसे भी क्या जल्दी, जरा रुक जाए, घर में जो दाल साग है दो चार लुकमे हमारे साथ खा लेती।
मेहरबानी, वो भी आप ही का घर है, अपना काम और घर छोड़कर यहाँ आई हूँ कि शायद किसी का भला हो जाए।
भला तो वही था जो अंजाम पाया, तलाक।
अच्छा खुदा हाफिज, में चलती हूँ, सहमत की माफी चाहती
हूँ।
अच्छा कोई
खुदा हाफिज,
खुदा हाफिज,
खुदा हाफिज।
तफा बड़ी आई वहाँ से भला करने वाली है। ये क्या किलो सेब? अरे मूंगफली तो छीली नहीं गई, किलो सेब चट कर गई। खाना आसान जो है।
जब भी ये फैसला करो कि अपने घर में अपनी मर्जी से रहना चाहती हो तो मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, मेरी सराखों पर। अच्छा अच्छा मेरे बच्चे,
बड़ी मेहरबानी आपकी।
खुदा तुम्हारा निगहबान हो। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। आपने बहुत मेहरबानी फरमाई जो यहाँ तशरीफ लाई।
कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था।
अपनों से तो गैर अच्छे।
अगर पहले दिन आप कहते तो कुछ और बात थी, अब तो मैं उसे किसी कीमत पर कबूल नहीं करूंगा।
आखिर क्यों?
इसलिए कि अब साबित हो गया है वो औरत गैर जिम्मेदार ममता से आ रही, इस सारे अरसे में एक बार भी बच्चों को देखने नहीं आई। हर किस ने
शायद वो मसरूफ
नहीं,
शायद उसे हौसला नहीं,
उसे इजाजत नहीं।
कहां से?
उसकी माँ और बहन की तरफ से।
मेरा ख्याल है ऐसा नहीं।
मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी बीवी अपनी माँ और बहन के इख्तियार में, सुई की नोक जितना भी उसे इख्तियार हासिल है। एक औरत जिसके फैसले उसके अपने नाहों बेहतर है, वो उन्हीं के पास रहे जो उसे देते हैं, यही बेहतर है।
जैसे कह रहे हो अगर ऐसा ही है तो वाकई तुम ठीक कहते हो।
खुशी हुई कि कोई तो मिला जिसने मेरा दर्द जाना, ऐसा दर्द जो मुझे खाया चला जा रहा है।
क्यों अपने आशा पर बोझ डाल रहे हो? तहम्मुल से काम लो, तुम दो बच्चों के बाप हो।
आप जानते हैं मेरा सब कुछ उन्हीं का है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी उन पर बुरा वक्त नहीं आना।
लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी बीवी के साथ एक छत के नीचे जिंदगी गुजारो और तुम्हारे बच्चे भी तुम दोनों के जरिए साया रहे।
अब तक बगैर माँ के क्या उन पर बुरी गुजरी है, इसके बाद भी अल्लाह मालिक है, मैं उन्हें माँ याद नहीं आने दूंगा।
और तुम खुद? मेरा मतलब यह है कि अब इसी तरह तन्हा रहोगे?
मैंने अपने आप से अहद किया है जब तक ये बड़े ना हो जाए मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचूंगा।
ये क्या बात हुई, ये तो तुम जिद कर रहे हो, अपने आप से जिद, अपने बच्चों से जिद और सबसे बढ़कर अपने बीवी से जिद, और वो भी किस लिए, बिना वजह। गुरूर और जिद से तो आदमी अपनी बात साबित नहीं कर सकता, और वो भी किस कीमत पर। हर बार तो मैं नहीं चलती, कभी झुकना भी पड़ता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि कोई भी औरत पहली बीवी की जगह नहीं ले सकती, और सबसे बढ़कर सौतेली माँ सगी माँ की जगह नहीं ले सकती। ले सकती है?
तुम्हारी चांद जैसी सूरतों पर कुर्बान। माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। कितना अर्सा हो गया माँ ने तुम्हें देखा तक नहीं।